اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات علی محمد وآل محمد آئیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دے محمد آل محمد نوازش جیسا کہ میں نے کل بھی تعارف کرایا تھا مفتی نعمان صاحب وغیرہ بھی تشریف لائے تھے کل یہاں دیکھیے یہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کریکٹر پیش کریں گے نا تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے میں اسی چیز پر زور دیتا چلا آیا ہوں آج آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آ رہا ہے کہ جب بھی آپ اس لہجے میں آواز دیں گے جس لہجے کی طرف اہل بیت علیہم السلام نے حکم دیا ہے کہ اس لہجے میں پکارو اس لہجے میں بات کرو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آواز صدا بصحرا ثابت ہو اس کا جواب ضرور آتا ہے اور دیکھیے پرسوں دشمنوں نے کیا کوشش کی ان کی تو کوشش یہ تھی نا کہ اور جھگڑا بڑھے ان میں آپس میں لڑائی ہو وہ تو چاہتے یہی ہیں نا شر پسند یہی چاہتے ہیں کہ شہر میں ملک میں سب ایک دوسرے کے قتل عام میں مصروف ہو جائیں لیکن پرسوں جو واقعہ ہو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک گئے ہیں اس کا اثر کہاں کہاں تک پہنچا ہے پوری دنیا کی بات کرنا ہو پوری دنیا میں اس کے اثرات اور کل بھی آپ نے دیکھا ہو میری دیگر مجالس سے میں نے کہا کہ مسلسل علماء اہل سنت کے رہنما اور اہل سنت کے عوام دفتروں میں اپنے اداروں میں ہر جگہ ہماری مجالس میں آ کے بھرپور اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں یا حسینی ہے اور جو حسینی نہیں ہے وہ یزیدی ہے ان مجالس میں آ کے مظلوم کی حمایت کا اعلان کر کے اور یہ ہمارے ساتھ وہاں بھی مجالس میں بھی تھے علماء حضرات صاحبزادہ اظہر رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل سے ہیں صاحبزادہ مطلوب احوال صاحب آل پاکستان سنی تحریک کے بھی ہیں اور مفتی علامہ رفیق صاحب جو سنی تحریک پاکستان سنی تحریک سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور کل بھی مفتی نعمان صاحب وغیرہ تشریف لائے ہوئے تھے آج بھی دیگر مجالس میں بھی پورے کراچی میں علماء اہل تسنن شریک ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ نہ کل دہشت گردوں سے ہمارا کوئی رشتہ تھا نہ آج ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے مل کر پاکستان بنایا تھا اسی طرح اب بچانے کا وقت آیا دیکھیے آپ عجیب بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے دو تین سال پہلے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب پاکستان بنایا تھا تو ہم نے مل کر بنایا تھا آپس میں ہم کتنی چشمک ہو جائے ہماری کتنے ہم آنکھ مچولی کھیل لیں مگر جب بھی بچانے کی بات آئے گی تو ہم ہی دونوں کو ایک ہونا پڑے گا اور آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں شیعہ اور سنی متحد ہو کے جا رہے ہیں کیوں اب بچانے کی بات آ گئی اب آ گئی ہے اس ملک کو بچانے کی بات میں اپنی پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ تو جن حالات میں جی رہے ہیں سو جی رہے ہیں لیکن ہماری قوم سن لے یہ جو یہاں آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے علماء اہل تسنن کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں ان کو بھی دہشت گردوں کی جماعتوں کی طرف سے کتنی تھریڈیں آپ کو نہیں پتا لیکن اس کے باوجود علل اعلان حق کا اظہار کرنے آپ سے محبت کا اعلان کرنے مظلومیت کا ساتھ دینے میں نے کل کہا تھا آپ سے آج ان کے سامنے میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میری قوم گواہ ہے کہ کل میں یہ وعدہ کر چکا ہوں لیکن اب آپ کے سامنے اس وعدے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس کڑے وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہر کڑے وقت میں آپ نے ساتھ دیا تو آپ بھی سن لیجئے ایک حسینی ذاکر آپ کو یہ قول دے رہا ہے کہ جب بھی آپ پر وقت پڑا آپ کے پسینے کی جگہ ہمارا خون بہ جائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات کے رکھو. بس عزیزان محترم موضوع کی طرف آتے ہیں, اور اتفاق ہے کہ موضوع بھی ہمارا ایسے ہی چل رہا ہے, کل جہاں ختم کیا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے کہ اولیاء کرام کے مراتب کیا ہیں. اولیاء کرام کے مراتب درجہ بندی ہے نا بھائی. دیکھیے ہم نے ولی کا ذکر ہے, دو منٹ میں خلاصہ کر دیں تاکہ ہمارے جو مہمان ہیں احباب وہ پس منظر سے واقف ہو جائیں. یہ قرآن مجید میں جیسے ہم جس آیت کی تلاوت کا شرف ہر روز حاصل کر رہے ہیں, لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. کہ ایمان لانے والوں, کفار کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو کبھی اپنا سرپرست نہ بنانا. یہاں بھی اولیاء کا لفظ ہے کہ اپنا اولیاء نہ بنانا. اور جناب ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, تو ولی کا ذکر تو وہاں بھی استعمال ہوا. ان المومنین والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, مومنین اور مومنات بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب آیت الکرسی کے ساتھ جو آیت آگے بڑھتی ہے اس میں تو صاف صاف طور پہ بتا دیا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ان کے سرپرست کیا ہیں؟ طاغوت. یہ بات چل رہی ہے نا کہ مراتب ہیں, مراتب ہیں, حتیٰ کہ مومنین میں بھی اولیاء کے درجے اور مراتب ہیں. اور یہی چیزیں ہم کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں. ایک جگہ جمع کرنے والی جو چیزیں ہیں کربلا ہے, یعنی عشق رسول و آل رسول کے بعد تیسری چیز کون سی ہے؟ میں کل بھی کہا تھا, آج بھی یہ علماء کے سامنے ببانگے دوہل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتا دے جو اولیاء کو نہیں مانتا وہ سنی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں, وہ کچھ بھی ہوگا سنی نہیں ہوگا. اہل سنت یاد رکھیے آپ, اطمینان سے اعتقاد سے پورا مطالعہ میرے سامنے تاریخ کا, یاد رکھیے وہ سنی سنی ہی نہیں جو اولیاء کا قائل نہ ہو, جو ولایت کا قائل نہ ہو سنی نہیں. بس کون سی چیز ہمیں لے کر آتی ہے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اولیاء کو مانتے ہیں, مانتے ہیں, اچھا تو سید الاولیاء کون ہے نا؟ بس یہی شیعہ, وہ شیعہ شیعہ نہیں جو اولیاء کا قائل نہ ہو, جو شہباز قلندر کا قائل نہ ہو, جو بھٹائی کا شاہ عبد الطیب بھٹائی کا قائل نہ ہو, جو عبداللہ شاہ غازی کا قائل نہ ہو, شیعہ کہاں رہتا ہے بھائی؟ تو بس تمہارا سید الاولیاء کون؟ وہ تو خدا کے بندو, تمہارا بھی سید الاولیاء وہی, ان کا بھی سید الاولیاء وہی. تو کتنا ہی جھگڑا ہو یہ ولایت ہمیں پھر ایک جگہ جمع کر دیتی ہے. یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہم سب کو کھینچ کھینچ کر لے آتی ہے, ایک جگہ جمع کر لیتی ہے. کتنا ہی جھگڑا کر, یہی راز دشمنوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کتنی ہی سازشیں کر لو یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے بالآخر کہیں نہ کہیں تو اکٹھا ہوں گے, اگر لڑیں گے تو پھر ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں جاؤں گا, یہ بھی جائیں گے, پیچھے لڑ کے آئے محلے میں منہ چھپا رہے ہیں, ارے بھائی ابھی تو اس سے لڑا تھا پچھلے مہینے وہاں, اب یہ بھی یہاں آ گیا, میں بھی یہاں آ گیا, کیا ہوا, شرم آئے گی نا. لہذا اللہ نے ہمیں ملانے کے لیے کتنی مشترک چیزیں ہمارے پاس رکھی ہیں. یہ خلاصہ تھا گزشتہ تقریروں کا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں ایک امانت کا ذکر ہے, توجہ رہے آپ, تو ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کانا ظلوما جہولا. سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی 71ویں, اگر نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, مطلب ہے آخری آیات میں سے, ممکن ہے اس سے اور کوئی نمبر, لیکن آیت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی. بس ہم نے بے شک اس امانت کو رکھا, امانت کا نام نہیں ہے, انا عرضنا الامانۃ, یہ امانت پیش کی, امانت رکھی ان کے سامنے, رکھی کس کے سامنے رکھی؟ علی السماوات والارض والجبال, آسمانوں میں کو دی, زمین کو دی, پہاڑوں کو دی. فابینا ان یحملھا یحملنھا, ان سب نے منع کر دیا, انکار کر دیا, انکاری ہو گئے کہ معبود ہم نہیں اٹھا سکتے, اپنی جان بچا لی سب نے, کہا معبود ہم یہ امانت کا بار, اس امانت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. واشفقنا منھا, اور ڈر گئے, اس کے وزن سے ڈر گئے. یہ کتنی بھاری چیز ہے جس سے یہ ڈر گئے. لیکن انسان نے, وہ حمل اہل انسان, انسان نے یہ امانت اٹھا لی. اب कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि अमानत से मुराद है कुरान। अमानत से मुराद क्या है? कुरान मजीद। आइए देखते हैं कुरान मजीद का वस्त तो कुरान मजीद ने खुद बयान किया। لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله, अगर इस कुरान को नाजिल कर देते पहाड़ों पर तो ये अल्लाह के खौफ से लर्जा होकर रेजा रेजा हो जाता। ऐसे ही है ना, वजन बताया ना कुरान का, किताब नाजिल हुई, कल्बे रसूल पे नाजिल हुई, वास्ता बन के आप तक पहुंची, आपके लिए आई, सबने पढ़ी, बल्कि सूरह जिन और सूरह रहमान गवाह है कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए, जिन्नात के लिए भी सूरह जिन है उसमें। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान का खिताब किससे है? इंसानों से भी है और जिन्नात से भी है। ऐसे ही है ना, बस ये कौन सी अमानत है कि इन सबको देना चाहिए, सब इनकारी हो गए, हम नहीं उठा सकते, हम नहीं उठा सकते। बस उठाया किसने? इंसान ने। और इंसान के लिए क्या कहा फरमा रहा है परवरदिगार, इन्नहु काना ज़लुमन जहूला, इसने अपने हक में जुल्म भी कर लिया, अपने हक में नादानी भी कर ली। बस ये ऐसा संगीन बार है, ये जो भी अमानत है इसका वज़्न इतना है, इतना है, इतना है कि जो कबूल करेंगे उनके लिए भी उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना ये फरमाया ना जाता कि इन्नहु काना ज़लुमन जहूला। बस ये ऐसा बार है कि बार बार इकरार लेने के बाद सबको पेश किया गया, सबने मना कर दिया, हम नहीं उठा सकते, हम नहीं उठा सकते। मगर इंसानों ने कहा भी कि हम उठा लेंगे, इसका मतलब यह हुआ ज़लूमन जहूला का कि अहदो पैमान के बाद मुकर गए, अहदो पैमान किया मगर मुकर गए। जब ही तो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, अपने हक में जुल्म किया, नादान था अपने हक में, वरना समझता, सोच समझ के हाँ करता, हाँ की मगर मुकर गया। अगर अपने अहदो पैमान से ना फिरता तो सूरह मायदा की इब्तिदा में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए ईमान वालो अपने अहदो पैमान को पूरा करो। बस इसका मतलब कि ईमान वालों ने जो अहदो पैमान किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। अब आइए, अब देखे इंसानियत में, इंसानियत क्या मखलूकात में करीब तरीन हस्ती, महबूब तरीन हस्ती अल्लाह की कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह तखलीक कायनात, ऐसे ही है ना, वजह तखलीक कायनात। आप ये बताइए कि जब कुफार कुरैश आए और आने के बाद जनाब अबू तालिब मोमिने आले कुरैश, मोमिने आले कुरैश जनाब अबू तालिब, और मैं आपकी खिदमत में एक बात और कर दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बातें आपके कानों तक पहुंचाना कि आपको हैरत होगी कि सबसे जखीम किताब जो ईमान अबू तालिब पे लिखी है ना, इसी नाम से मोमिन आले कुरैश पे, वो किसी शिया ने नहीं लिखी, वो हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम अबू साइन चिश्ती की लिखी हुई है। दो जिल्दों में है और एक एक जिल्द 500-500, 600-600 सफात की है, और भी उलमा ने लिखी है अहले सुन्नत के, लेकिन सबसे मोटी किताब जो ईमान अबू तालिब पे है वो किसी शिया की लिखी हुई नहीं है, वो हमारे अहले सुन्नत के आलिम, तो खुदा के बंदो इतना तो देखो, आंखें खोलो और जमाने को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कदम कदम पर मोहब्बत के फूल बिखरे हुए, गुलशन लगे हुए। फिर क्यों मैं नफरतें बखेरूं, क्यों नफरतें बांटूं, जब मुझे मालूम है कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी इंसान का दिल धड़कता है उस दिल की धड़कन में मोहब्बत रसूल और आले रसूल बसती है। तो वो मोमिन आले कुरैश जनाब अबू तालिब के पास आए, तशरीफ लाए, और आने के बाद कहते हैं कि भाई अच्छा ऐसा करो, नहीं मानता आपका भतीजा तो कुछ मामलात कर लेते हैं, कुछ मामलात, कुछ बारगेनिंग, बारगेनिंग का लफ्ज तो समझते हैं ना, सुबह शाम होती, ये ले लो, ये दे दो, अच्छा चलो चलो ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और ये आप सुबह शाम अब भी देखा करते हैं, तमाशेबाजियाँ हो रही हैं, सारा वही चक्कर है, बारगेनिंग का ही मसला होता है सारा। खैर अब मैं और आगे नहीं जाना चाहता, अपने मौजमून पे रहना चाहता हूँ, वक्त बहुत हो जाता है, बाकी बातें आप खुद ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो खैर जनाब, अब हुआ ये कि ऐसा है कि भाई जितनी दौलत चाहता है दे देंगे, सरदार बनना चाहता है बन जाओ, हम उसे अपना हुक्मरान बनाने को भी तैयार हैं जो हमारे मफादात का तहफ्फुज़ कर ले। अब तो समझ में आ गई मेरी बात, क्या इन काठ के उल्लुओं को सदर भी बनाने को तैयार है, वजीर आजम बनाने को भी तैयार है? क्यों? अरे ये मुल्क चलाए ना चलाए, हमारी गाड़ी जरूर चलाएं, हमारी गाड़ी जरूर चलाएं। लिहाजा सरदार बनना चाहता है बन जाए, बस क्या बात है, बस इतनी सी। हमारे मामलात में ये जो हमने सनम तराशे हुए हैं लोगों के दिलों को बहलाने के लिए, लोग यहां आके अपना दिल बहला के चले जाते हैं कि हाँ चलो भाई गम हल्का हो गया, और अब इनकी जेबें खाली कर देते हैं। तो ये जो सनम तराशे हुए हैं, बस इनके खिलाफ बात ना करें, बाकी जो करना है कर ले, सरदार बन जाओ, अपना बादशाह बना लेते हैं, चलो भाई हमारा बादशाह बन गया, ये बादशाह बना लो, ये कर ले भाई, दौलत ले ले। और क्या चीजें थी उस जमाने में, माज़ल्ला लालच दिलाने के लिए हसीन तरीन लड़की अक्द में दे देंगे, जिस बच्ची से चाहेगा वो दे देंगे इसको, दे देते ना बादशाहों को। खैर छोड़िए, हद अदब मलहूज खातिर और ज़बाने मिंबर महफूज रखने की खातिर आगे बढ़ता हूँ। हसीन तरीन लड़की, ये क्योंकि तारीख है इसलिए पढ़ रहा हूँ ये जुमला, हसीन तरीन लड़की देते हैं, जितनी दौलत मांगते हैं देते, कहो अपने भतीजे से क्या हमारे खुदाओं को बुरा ना कर। अच्छा बाबा ऐसा है कि एक साल हम उसके खुदा की इबादत कर लेंगे, यानी बारी लगा लेंगे, समझ में आ गया? ये आज का सिलसिला नहीं है, हमेशा का सिलसिला है, एक बार तुम एक बार हम, बारी लगे ना, वही पेशकश लेके आए ना कि भाई एक बार एक साल तुम हमारे खुदाओं को कुछ नहीं कहो, चलो नहीं इबादत करते कुछ ना कहो, यानी हमें छेड़ो मत, और एक साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेंगे बारी 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 बारी। 67 साल से यही देखते आ रहे हैं ना, इसलिए आपको खामोशी लग गई कि इतना ज्यादा सच भी ना बोलो भाई, इतना बड़ा सच बोल दिया इतनी बार से, यही होता रहा ना, लेकिन कब तक? नकाब उलट गई। जवाब क्या दिया? वो जो बताना चाह रहा हूं कि वो पैगंबर तो उस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं, गिनती के मुसलमान इतने मुसलमान कि उन्हें भी हबशा की तरफ हिजरत करा दी खुदा के रसूल ने, और खुद भी हिजरत करने वाले हैं जनाबे अबू तालिब के पर्दा फरमाने के बाद, जो इस्लाम लाए पत्थर पे खींचा जाए, गर्व सलाखों से दागा जाए, कत्ल कर दिया जाए, बायकॉट हो जाए, उसका हुक्का पानी बंद हो जाए, यानी सोशल बायकॉट, इक्तिसादी बायकॉट कर दिया जाए, उस वक्त खुदा का रसूल जवाब देता है कि ये कुरैश जमा होकर आ जाए, मेरे मुकाबले पर मुझे झुका नहीं सकते, मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे, एक हाथ पे चांद रख दे, जब भी मैं दीन की दावत देने से गुरेज नहीं करूंगा और उनकी किसी बात पे अमल नहीं करूंगा। ऐसा रसूल यार, तवज्जो से ऐसा रसूल कोई भी हुक्म पहुंचाने में कोई ताखीर की नहीं की, कोई खौफ हुआ नहीं हुआ, कोई ख्याल आया नहीं आया, पैर उखड़ गए उहद में, तारीख है ना, मुसलमानों के वक्ती तौर पे पैर उखड़ गए हुनैन में भी और उहद में भी, ज़ाहिर कुरान मजीद है, तारीख है, सब चीजें मुश्तरक है, कोई इख्तलाफ नहीं है, उखड़ गए वक्ती तौर पे, तारीख है, गवाह है कि खुदा के रसूल के कदम जमे रहे ना, और वही चंद जानिसार। यहाँ बस हुनैन का जरा सा मंजर एक मिनट में दिखाता हुआ चला जाऊं कि जब हुनैन में कदम उखड़े थे वहां भी ये गुरूर हो गया था, उहद में भी कसरत का गुरूर हो गया था, और हुनैन में भी 12,000 का लश्कर था मुसलमानों का, जब बनी हवाजिन और बनी सकीफ ने अपने तीरों की जद पर रख लिया था, मुसलमानों के पैर उखड़ गए थे, जद्दे की तरफ रुक करके, समंदर की तरफ रुक करके भागना यानी फरार की हालत में थे, अल्फाज को एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि तारीख में यही कुछ है, मगर उस वक्त जब पैर उखड़ गए थे मुसलमानों के, 5-6 अफराद का नाम है, जाहिर है कि मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मौलाए आरिफान मौलाए कायनात आप जानते हैं कि उहद में सबसे ज्यादा जख्म आए थे 37, क्योंकि डटे रहे ना, लड़ते रहे, दिफा करते, जुल्फ़िकार नाजिल हुई, सबका इत्तेफाक, सियूती को भी लिखना पड़ा कि हाँ भाई आवाज तो गूंजी थी, जिब्राइल की आवाज सबने सुनी थी कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला, बस सियूती ने जरा उल्टा लिख दिया लफ्ज, यही है ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार ला फता इल्ला अली, यू करके लिख दिया, लिखा सबने, माना सबने, ठीक है। वहां पे खुदा के रसूल फरमाते हैं अना नबीउल्लाह कैस अना बनो अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ऐसा रसूल अगर किसी जगह कोई हुक्म पहुंचाने में झिझकता नजर आ जाए तो वो हुक्म कितना भारी होगा, वो हुक्म कितना संगीन होगा, वो अमानत का वज़्न कैसा होगा कि जहां कुरान मजीद इस लहजे में अपने रसूल को खिताब करे कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा अंज़ला इलैका मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आप तक भेजा गया है, अगर ये ना पहुंचाया कार्य रिसालत ही अंजाम ना दिया।
अल्लाह
ये क्या चीज है, डंडी ना मारो, डंडी ना मारो, मतलब बयान करते वक्त ये क्या चीज है जिसके लिए कहा जा रहा है फाइन लम तफ अल्फमा बल्लगता रिसालत हो, ये फेल अंजाम ना दिया तो कार्य रिसालत ही अंजाम ना दिया। क्या मतलब, ये नमाज का हुक्म है वो तो आ चुकी है, सबसे पहले आई, रोजे का हुक्म है हो चुका, जकात का हुक्म है आ चुका, जिहाद का हुक्म आ चुका, हज हो चुका, सारे अहकाम पहुंचा दिए, पूरी रिसालत का इन्हिसार है इस एक हुक्म पर। कहा जाता है कि वो अब वही दीनी अहकाम थे कि नहीं पहुंचाए तो कार्य रिसालत, क्या मतलब कार्य रिसालत, कार्य रिसालत का मतलब कार्य रिसालत हो चुका। ये कोई हुक्म है जिस पर कयामत तक के लिए इन्हिसार है दीन के तकमील होने का, बस ये है वो अमानत कि जिसका बार जिसका वज़्न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक ववज़ाना अंका विज़रकल लज़ी यन्क़ज़ ज़हरक। ऐ रसूल क्या हमने शरह सदर नहीं किया, क्या हमने वो बोझ जिससे आपकी पुष्ट झुकी जाती थी क्या वो हटा नहीं दिया, ये कौन सा वज़्न है, ये कौन सी संगीनी है। बस अब आइए अब इस बात को देखिए कि सब अहकाम आ गए, सब अहकाम, ये हुक्म जरूर ऐसा है कि जिसमें कयामत तक के लिए इन्हिसार है, और कौन सा हुक्म है जिसको पहुंचाने के लिए इतना एहतिमाम कर रहे हैं, नमाज का हुक्म 1,24,000 सहाबा के सामने नहीं दिया, वो तो शुरू से ही था, यानी जब हुक्म आ गया वही आ गई कि अब नमाज तमाम पर वाजिब कर दी गई मुसलमानों पर। आज जो इस्लाम कबूल करता था चलो भाई नमाज सिखाओ इसको, रोजे का हुक्म नहीं 1,24,000 के सामने दिया, क्यों भाई नमाज रोजे का हुक्म आ चुका था, जो इस्लाम ले आया चलो भी बताओ इसको रोजा कैसे रखते हैं, जकात कैसे देते हैं, हज कैसे देते कर अदा करते हैं, खुम्स कैसे अदा करते हैं, सारे काम सीखने हैं ना, करो सब अदा करो। बस वो हुक्म तलाश कीजिए जिसके रावी 1,24,000 बन जाए, वो रिवायत तलाश कीजिए कि आज भी मुस्तनद रिवायात में उसके रावी सैकड़ों की तादाद में हो, जगह बदल दी, कुछ ने मौका बदल दिया, मगर कहा सबने एक ही बात के हाँ, वो ऐलान जो हज के बाद हुआ गदीर खुम में हुआ वो और कोई ऐलान नहीं था, वो विलायत का ऐलान था जिसमें अल्लाह के रसूल को कुछ हिचकिचाहट हो रही थी कि अगर अली की विलायत का ऐलान कर दिया कहीं आधे लोग फिर ना जाए दिन से, इसलिए आयत का लहजा ये था या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा अंज़ला इलैका मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु। और अगर लोगों का डर है, अगर लोगों का खौफ है कि ये नहीं मानेंगे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए हबीब आपका रब बचाएगा आपको इन लोगों से, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आपका अल्लाह लोगों से बचाएगा। एक ही हुक्म है जो 1,24,000 सहाबाए किराम के दरमियान में सुनाया गया, और वो था विलायत का हुक्म, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलियुल मौला, इसीलिए कयामत तक जो जो रसूल को अपना मौला मानता है हर वो इंसान
भी अपना मौला मानता है।
यह है वो विलायत, यह है वो अमानत जिसका बार उठाना हर एक के बस की बात न थी। संगीन था, भारी था, यह वजन उठाना भारी था। अब रिवायत की तरफ आता हूं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से और याद रखिएगा कि आठवें इमाम से भी एक लफ्ज की तब्दील के साथ ये रिवायत है। बुनियाल इस्लाम वाला खमसती अशिया अल सलात व जकात व सौम वल हज वल विलाया वलम युनादि बिशैइन कमा नूदिया बिल विलाया। याद रखो कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है। बुनियाल इस्लाम वाला खमसती अशिया, नमाज, जकात, रोजा, हज और विलायत। वमा लम युनादि बिशैइन कमा नूदिया बेविलाया, किसी शय को इस तरह से आवाज नहीं दी गई जिस तरह पुकारा गया विलायत के लिए। क्यों? यही तो पुले सरात बन जाएगा इंसानों के लिए। ये नमाज तो पढ़ेंगे हम लोग, रोजे तो रखेंगे हम लोग, पता कैसे चले कि अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम को कौन समझा कौन नहीं समझा। किसने मुराद समझी ये दुनियावी बादशाह सदर वजीर आजम और किसने समझा। अभी सुन रहा था मैं, हाँ महागी किसी की शख्सियत को डैमेज नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ बतौर कुल्ली तो मैं कहता हूँ सबको, लेकिन पर्सनल कभी भी जात के लिए नहीं होना चाहता, ना होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि जब जाहिरी तौर पर एक बहुत बड़ा मनसब रखने वाले ने मजाक में ही सही मगर कभी तो सच बोला, मजाक में बोला। मजाक उड़ाना चाह रहे होंगे किसी का मुझे तो नहीं पता, मैंने तो पढ़ा अखबार में कि ये कहा उन्होंने, मगर क्या बात कह दी साहब। हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इनका भी दिल खुश हो जाएगा। सैलाब की बात हुई तो पता नहीं किस बस्ती में झोंक में कह गए कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी बैठे हैं ना। अब मुझे बताइए कि हाकिम कौन, हुकूमत किसकी, यह है विलायत। यही फर्क है हुकूमतों और विलायतों में। हुकूमतें खत्म हो जाती है, हुक्मरान आते जाते रहते हैं, मगर ये वली ये औलिया इनको अल्लाह ऐसी हुकूमत देता है कि हर जमाने के हुक्मरान चाहे दिखावे के तौर पे ही सही अपना सर झुकाना लाजिम समझते हैं कि अगर अब्दुल्ला शाह गाजी से रिश्ता ना जोड़ा, अगर शाहबाज कलंदर पे चादर ना चढ़ाई, अगर शाह भिटाई पे फूल ना चढ़ाए, लोग वोट नहीं देंगे। हुकूमत किसकी है? यह है वो ताज है विलायत, यह है वो ताज है इन्नमा जो अल्लाह ने रसूल ने अली के सर पे रखा है। यह है वो विलायत का ताज। अब समझ में आया सैयदुल औलिया का माना? आए माए शाएं करना और बात है, लेकिन इसको समझिए कि विलायत क्या है। यह है वो मरातिब कि जिसे पूरी दुनिया वली कहे, जिसे पूरी दुनिया वली कहे, उससे पूछो कि तुम क्या हो, उसे पूछेंगे भाई तुम क्या हो, तो कहता नजर आएगा हैदरियम अलंदरम मस्तम, बन रहे मुर्तजा लगाओ कुफर का फतवा, हिम्मत है तो लगाओ कुफर का फतवा, जानू मैं भी, कहो जूते मार के ये कौम ना निकाल दे तुम्हें पाकिस्तान से तो फिर कहना लगाओ कुफर का होता। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम, सरगरो है तमाम रिंदानन तमाम पीने वालों का सरदार हूं, सरगरों है
तमाम रिंदानम, क्यों के सगे कुए शेरे यजदानम। तुम मुझे वली कहते हो, कुतुब कहते हो, अगर मुझे ये सरदारी मिली है तो इसलिए मिली है कि अली की गली का कुत्ता हूं।
समझ में आ गई बात? उससे तो पूछो कौन हो, ये मकाम कैसे मिला, तो बताएगा राज क्या है कि 750 साल से लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा। वो राज बताएगा, ये है वो हुकूमत जो अल्लाह देता है। और तुम मरे जा रहे हो उन सीटों के पीछे, जो क्या बताऊं कि जब उतरते हो तो कैसे जाते हो, आते बड़े तमतराक के साथ है, आते बड़े आन बान शान से, हम जूते जब तक ना लगे उस वक्त तक जाते नहीं। ये तारीख जो हम देखते चले आ रहे हैं, अब भी यही हाल है, नहीं जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे ना छोड़ो, जितनी देर बैठोगे उतनी जिल्लत तुम्हारे नसीबों में लिखी है। इतना तो हम भी जानते हैं कि ये कुर्सी रास नहीं आती, पाकिस्तान की कुर्सी में पता नहीं क्या है, जिसको फेंका बिल्कुल जलील करके ही फेंका। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, गलत आ जाए। अब समझ में, क्योंकि गलत ना अहल, ना अहल जब आएगा यही होगा ना, तो ये है वो वली, ये है वो औलिया। और जो इनका सरदार हो उसका क्या मकाम होगा, उसका मकाम आज सुन लीजिए, जिंदगी रही तो कल यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर शय को फना है, हर शय को हलाकत है, सिवाय किसके, अल्लाह के चेहरे के। माजअल्लाह माजअल्लाह, क्या कोई शिया जिस्म जिस्मानियत का कायल हो सकता है अल्लाह की, काफिर हो जाएगा शिया हो या सुन्नी हो। लेकिन कुरान की आयत है ना, बताइए आप, कुल्लो शय इन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर शय फना, हर शय हलाकत में है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। क्या मतलब? नहीं, सब ये कहेंगे नहीं, इससे मुराद वो मजाजी चेहरा नहीं, मजाजी चेहरा नहीं, फिर कौन सा चेहरा भाई? जैसे कुरान में कहा यदुल्लाह फौका एदीह, ये जो बैत शजरा कर रहे थे, इनके हाथों पे जो हाथ है किसका हाथ है? अल्लाह का, अल्लाह का हाथ है। हालांकि अल्लाह के जिस्म जिस्मानियत तो नहीं है ना, मगर कोई हाथ है जिसे अल्लाह अपना हाथ करार दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कि किसी की जर्ब है जिसे जर्ब यदुल्लाही कहा जा रहा है, अल्लाह अपनी जर्ब करार दे रहा है, अल्लाह अपनी हर्ब करार दे रहा है, अल्लाह अपनी जंग करार दे रहा है, ऐसे ही है ना। बस ये वही मजाज, बस ये कहां तलाश करूं, ये वजहुल्लाह जो कुरान में है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर शय को हलाकत है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। माबूद, कहां ढूंढूं तेरा चेहरा? अरे मजाज ही सही, मजाज ना सही, हकीकी सही, मफहूम सही। आखिर कोई तो पैकर होगा, कोई तो पैकर होगा, तो बस मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं, शिया हो या सुन्नी, इस हदीस पे तो सबका इत्तेफाक है ना कि कोई चेहरा ऐसा था कि जिसे देखकर सब इबादत किया करते थे, क्योंकि रसूल खुदा की जबानी सुन लिया था, अन्नज़रो अला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। अरे मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो कहता हूं अलैहि सलाम, मैं क्या कहता हूं, अलैह सलातु व सलाम, अलैह सलाम। पूछो दुनिया से कि वो क्या कहती है, वो कहती है अली करम अल्लाह वजहहु, अली वो अल्लाह ने जिसके चेहरे को मुकर्रम बना दिया। काबे को देखना इबादत है, काबे को देखना इबादत,
قرآن پہ نظر ڈالنا عبادت، یا علی کا چہرہ جسے دیکھنا عبادت؟ بس علی خدا نہیں، با خدا نہیں، خدا کی قسم
خارج ہو جائے گا دار ایمان سے جس نے عقیدہ رکھا کہ علی خدا ہے. سن لو، علی کے چاہنے والوں دھوکا کیوں کھایا دنیا میں؟ لوگوں نے، بعض لوگوں نے خدا نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ خدا نہیں، بس چاہا کہ اپنی صفات کا ظہور کرے تو وجہ اللہ کا لقب دیا علی کا. علی خدا نہیں مگر مظہر صفات خدا بنا دیا.
دعائے ندبہ میں جملہ پڑھتے ہو نا، اینا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ اولیاء، اے وہ چہرے کہاں ہے؟ اینا وجہ اللہ، اللہ کا وہ چہرہ کہاں ہے؟ یتوجہ الیہ اولیاء، اللہ کہ جس چہرے کی طرف رخ کرتے ہیں اولیاء. تو ڈھونڈ لو نا دنیا میں اولیاء کس چہرے کی طرف رخ کرتے ہیں، اولیاء کس در پہ اپنا سر جھکاتے ہیں. اب پڑھنا شروع کروں گا نا اقوال تو نہ معلوم کہاں تک بات جائے گی، مولوی الدین چشتی اجمیری سے لے کے خواجہ نظام تک، خواجہ اجمیری سے لے کے وہ خواجہ دلی تک بات چلی جائے گی اگر ان سب کے اقوال اور اشعار آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرو. بھائی اتنا سمجھ لو کہ اس در پہ سر جھکائے بغیر کہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں، کسی کو ملنے والا نہیں. بس یہ وہ ہے مجاز، کوئی ولایت کے کسی بھی درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک سید الاولیاء کے چوکھٹ پہ اپنے سر کو خم نہ کر دے، خم نہ کر دے. بس اس لیے اس ولایت کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور امتحان قرار دیا اعمال انجام دینے والوں کے لیے کہ اعمال تو سب انجام دیں گے، دل میں کیا ہے وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب ولایت کا باب آ جائے گا. اگر دل میں بغض ہے ولایت کا ذکر سنتے ہی چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اور اگر دل میں محبت ہے اللہ کے اولیاء کی، ان خاص بندوں کی، ولایت کا ذکر آئے گا چہرے پہ روشنی آ جائے گی. بس ایک جملہ آئی آر سی میں نقل کیا تھا، وہ یہاں بھی اجازت سے اپنے دوستوں کی نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت خوش ہوئے تھے یہ جملہ سن کے کہ دیکھو یہ فرق یاد رکھو، شیعہ ہو یا سنی، پہچان بتا رہا ہوں اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق کیا ہے. اولیاء اللہ کے جو ماننے والے ہو نا، شعبان میں دیکھو، رجب میں دیکھو، ربیع الاول میں دیکھو، سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. امام بارگاہیں ہوں یا مساجد ہوں یا خانقاہیں ہوں، سب جگہ آپ کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ روشنی، نور نظر آئے گا. ان کے گھروں میں چراغاں ہوگا، ان کی مسجدوں میں چراغاں ہوگا، ان کی خانقاہوں میں چراغاں ہوگا، ان کے دلوں میں چراغاں ہوگا، مر جائیں گے تو قبروں میں بھی چراغاں ہوگا. نور ہے نا، ہر جگہ نور، مسجدوں میں نور، خانقاہوں میں نور، دل میں نور، قبر میں نور. اور جس نے یہاں ولایت کا انکار کیا ان دنوں میں پہچان ہو جاتی ہے، گھروں میں تاریکی، مسجدوں میں تاریکی، دل میں تاریکی، مر گئے تو قبر میں بھی تاریکی. یہ پہچان. لہذا مراتب ہیں مراتب، اور جائیں گے اس میں آگے تک، لیکن اب آج یہی تک بات کو ہم نے ختم کی. یاد اس لیے یہ اولیاء کی محبت، یہ تو دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، میں نے تو آپ کو عنوان پہلے دے دیا تھا. مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسے ماحول بنے گا کہ اولیاء کے چاہنے والے سب جمع ہو جائیں گے، مجھے تو نہیں معلوم تھا. آپ جان بھائی یہ تو آپ حادثہ ہوا، تو بس یہ کہتے ہیں نا کہ وہ رب جانے اللہ جانے، مومنین بہت اچھی طرح اس جملے کو سمجھتے ہیں، اللہ جانے، اس کے بندے جانے، وہ مشیت، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا ہے، اس پر چھوڑ دو اپنی ڈور، اسی پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو جاؤ. زمانے سے کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی ہمیں، جن جن دلوں میں آل رسول کا عشق بس رہا ہے انہیں کوئی بھی شکست
नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब जमा हो जाते हैं, सब जमा हो जाते हैं। बस आजादार हूँ, मैंने आपकी जहमतों को तमाम कर दिया। आज 5 मुहर्रम है ना, किसकी शहादत पढ़ी जाती है हमारे यहाँ? जैनब के लाडलों की। जैनब के लाड किस पर जान दे रहे हैं? हुसैन पर। हम तो कह रहे हैं जनाब अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बानी दी। करबला के जिस शहीद से पूछोगे उसकी माँ कहती नजर आएगी जा हुसैन पर कुर्बान हो जा, बहन कहती नजर आएगी जा हुसैन पर कुर्बान हो जा, जौजा कहती नजर आएगी जाओ हुसैन पर कुर्बान हो जाओ, सब तो हुसैन पर कुर्बान हो, दीन पर कौन कुर्बान हो रहा है? लेकिन उस ख्वाजा अजमेरी से पूछो ना, मैं नहीं दूंगा जवाब वो देगा, जवाब वो देगा कि शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, वो जवाब देगा कि दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त, इसलिए सब हुसैन पर कुर्बान हो रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी बता रहा है इसलिए कि जानते हैं सबके करबला में हुसैन ही दीन है और हुसैन ही दीन को पनाह देने वाला भी है। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इलाहा हुसैन, किसी शिया ने नहीं कहा। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि बस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ही हुसैन है। लगाओ कुफर का फतवा, हिम्मत है तो लगाओ, क्यों? जानता है कि हुसैन ही तो अलामत है, दीन की अलामत है, जो इस पर कुर्बान हो रहा है वो दीन पर कुर्बान है। इसलिए करबला में माओं बहनों बीवियों की ख्वाहिश है कि जो कुछ है सब हुसैन पर कुर्बान कर दिया जाए। इसीलिए शबे आशूर माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, ज़ैनब भी अपने खेमे में अपने बच्चों को तैयार कर रही, शहजादों मेरे बच्चों बहुत अरमान थे दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन अब देख रहे हो ना कि इतना बड़ा जो लश्कर जमा है, ये मेरे भाई तुम्हारे मामू हुसैन को कत्ल करने के लिए जमा हो गए। मेरी लाज रख लो, मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू कर दो और सुबह हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। और शहजादे अहद पैमान कर रहे हैं अपनी माँ के साथ, आप इत्मीनान रखिए मादरे के, बता देंगे सुबह हम किसके पोते हैं और किसके नवासे हैं। माँ खुश हो गई, खुश हो गई, ये वो माएँ हैं बच्चों की शहादत की खबरें सुनकर खुश होती हैं, खुश हो गई माँ। अच्छा अच्छा बच्चो, बस दो तीन बातों का ख्याल रखना। देखो देख रहे हो ना कि हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, सकीना प्यासे है, अली असगर प्यासे है, खबरदार पानी का रुख ना करना, पानी का ख्याल भी दिल में ना लाना, बच्चों ने वादा किया और ताकीद की माने दूध नहीं बख्शूंगी अगर पानी का रुख किया, बच्चों ने अहद पैमान किया। फिर माँ ने कहा देखो इस सरे साथ के खेमे तक पहुँचने की कोशिश करना, उसे कत्ल करने की कोशिश करना, वो कत्ल हो जाएगा तो वो सरदार है, जल खत्म हो जाएगी, मेरा भाई हुसैन बच जाएगा। और देखो दोनों मिलकर जंग करना, साथ रहना, साथ रहोगे तो ताकत बढ़ी रहेगी। बच्चों ने अहद पैमान किया, माँ को इत्मीनान हो गया। आप सुबह ये भी कहा था कि सबसे पहले जाना मैदान में, लेकिन देख रही है ज़ैनब के जब किसी के शहीद की इतला आती है और ना मोहम्मद की खबर नहीं आती, इसी बेचैनी में जोहर का वक्त आ गया। अब ज़ैनब की बेचैनी बढ़ी कि अब तक ओनो मोहम्मद की शहादत की खबर क्यों नहीं है, मैंने तो कहा था कि सबसे पहले जाना। आखिर फिजा को पैगाम दिया, फिजा इन दोनों को तो ज़रा बुला करना। दोनों शहजादे माँ के खेमे में दाखिल हुए, चेहरे पे गैज़ के आसार देखे, दस्त बस्ता सर झुका के नजरें ज़मीन में गाड़ कर खड़े हुए। ज़ैनब ने जुमला कहा अब तक जिंदा हो, क्या उस वक्त मैदान में जाओगे जब मेरा भाई कत्ल कर दिया जाएगा? मैंने तो कहा था कि सबसे पहले मैदान में जाना। बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। मादरे गिरामी हम पर नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, सुबह से कितनी बार जा चुके हैं मामू जान की खिदमत में, मगर हमें इजाजत नहीं देते मैदान में जाने। गुस्सा गैज कम हो गया था। अच्छा ये बात, तुम्हें इजाजत जरूर मिलेगी फिजा, माँ जाए तो मेरा सलाम तो कह दे। हुसैन को पैगाम मिला, बहन के खेमे में आए, मंजर देखा, वाकया समझ गए इससे पहले के सारी जहरा की फरमाती हुसैन कहते ज़ैनब बच्चों के लिए इजाजत ना मांगना मैं जानता हूं। भाई ऐसा ना कर, भाई ऐसा ना कर, ये मेरी तरफ से तुम्हारा सदका है। तो बहन ये बताओ कभी ऐसा हुआ कि किसी भाई ने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, अपनी बहन की आगोश उजाड़ दी? ज़ैनब फरमाती है भैया तो तेरी भी मजबूरी तो देखो, मेरी मजबूरी का भी तो ख्याल करो भाई। अगर ज़ैनब से कयामत के दिन माँ ने पूछ लिया ज़ैनब अपने बच्चों को बचा लिया, मेरा बच्चा हुसैन कत्ल हो गया, फिर ज़ैनब क्या जवाब? बस हुसैन ने दोनों शहजादों को सीने से लगाए, रोते हुए बाहर लेकर, एक को अब्बास ने सवार कराया, एक को हुसैन ने सवार कराया। चलते चलते होशियार किया अब्बास ने शहजादों, देखते चलते होशियार मुस्कुरा के ज़ैनब के लाडले कहते मामू जान आप ही के तो शागिर्द हैं, अभी देखिए हम कैसी जंग करते। शहजादों ने हमला किया, उस वक्त के रिवाज के मुताबिक पहले एक एक करके आते रहे, कौन टिकता हैदर कर्रार के नवासों और जाफर तैयार के पोतों के सामने। एक बड़ी तादाद जब इन दोनों के हाथों जहन्नम रसीद हो गई तो मिसरे साथ चिल्लाया एक एक करके जाओगे या पूरा लश्कर काट के फेंक देंगे, हमला करो इन पे मिलकर। उधर सबने मिलकर हमला किया, उधर ज़ैनब के लाडलों ने भी तकबीर बुलंद करके हमला किया और धकेलते हुए सिपाह को मिसरे साथ के सर पे पहुंच गए। ये मरूल पुष्ट खेमा से निकल कर भागा, चिल्लाता जाता है दो जवान, दो नौजवान, जवान भी नहीं नौजवान, तुम्हारे काबू में नहीं आते। भागता हुआ लश्कर कहता है जिन्हें तू बच्चे कह रहा है जरा इनके लड़ने का ढंग तो देख, इनके तलवार की काट तो देख। फिर कहता करीब नहीं जा सकते, दूर से घेर लो तीर बरसा। चारों तरफ से लश्कर ने ज़ैनब के लाडलों को घेर लिया और चारों तरफ से तीरों का मैं बरसना शुरू हो गया। अब सामने कोई लड़ने वाला तो है नहीं, कहां कहां से अपनी ढाल से सिपर से तीरों को रोकते। जब बच्चे तीरों से छलनी हो गए, सपनों से निढाल हो गए, अब हुक्म दिया कि चारों तरफ से यलगार कर दो और दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। तलवारों के वार, बर्छियों के वार, तबर के वार, नैजों के वार, लश्कर पे लश्कर, दस्ते पे दस्ता, निसाले पर निसाला दरमियान में हाइल हो गया। बच्चों ने बड़ी कोशिश की साथ रहने की मगर ना रह सके, जुदा जुदा हो गए। छोटा भाई गिरते गिरते आवाज देता है भाई मेरी खबर ले। भाई जवाब कहां से दे, उसके हाथ से भी तो तलवार गिर गई। बड़ा भाई जब घोड़े से गिरने लगा आवाज दिया खाला हो त्रिकली, अरे मामू जान हमारी खबर ली। हुसैन ने आवाज सुनी दौड़े कतलगाह की तरफ, अब्बास भी दौड़े, अली अकबर भी दौड़े। फिस्सा ने कहा बीबियों ज़ैनब के खेमे में जमा हो जाओ, ज़ैनब के लाडले आ रहे हैं। ज़ैनब ने खबर सुनी सजदे शुक्र में चली गई, मामू इस कमीज की ये कुर्बानी कबूल कर ले। खेमों में इंतजाम हुआ, एक शहजादे को हुसैन आगोश में लिए हुए, एक को अब्बास आगोश में लिए हुए खेमे में दाखिल हुए। लिटा दिया फर्श पे, बीबियां मातम कर रही हैं मगर ज़ैनब सुकून से है, मुतमईन है। देखा अभी बच्चों में कुछ जान बाकी है, हिस्सा से का हिस्सा, बस इतना इंतजाम कर दे कुछ बातें कर लूं अपने बच्चों से। खेमा खाली हुआ ज़ैनब का, मंजर रात वाला है, दरमियान में बैठ गई ज़ैनब, एक हाथ मोहम्मद के सीने पर, एक हाथ और के सीने पर। आवाज देखिए मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, किस हाल में हो, किस हाल में हो? बड़े बच्चे ने खून जिस्म से बह चुका है, ताकत जमा करके माँ की सलमा को सलाम किया, फिर जवाब देता है माँ तेरे गिरामी मिसर साथ के खेमे तक पहुंच गए, मगर वो मनमून पुष्ट खेमा से निकल के भाग गया। आप राजी तो हो गए? छोटा भाई कहता है माँ तेरे गिरामी खुदा गवाह हमने पानी की तरफ आग उठा कर दी है। आपने दूध तो बख्श दिया था, आप राजी तो हो गए। अरे ज़ैनब के लाडलों ने जब ये गुफ्तगु की तो कर्बला में अपने आशूर के बाद कभी अब्बास बनने वाली ज़ैनब, कभी हुसैन बनने वाली ज़ैनब, कभी अली के लहजे में खुतबे देने वाली ज़ैनब, अरे बच्चों की माँ भी तो है। बस बस सख्त के बंधन टूट गए ज़ैनब के। कभी सर पटकती है मोहम्मद के सीने, कभी और के सीने पर फरियाद बुलंद करती है मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ो। अरे मैं राजी हो गई, मैंने दूध बख्श दिया, तुमने मुझे मेरी माँ सहरा के सामने सरखरू कर दिया। अल्लाह